आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एक युवा प्रतिभाशाली गायक सागर सावरकर के साथ। उनकी संगीत यात्रा 7 साल की छोटी उम्र में शुरू हुई थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गुरुओं ने उनकी प्रतिभा को आकार दिया और सागर जी ने पहचान बनाई फिल्म संगीत के साथ। भारत और विदेशों में लगभग हर देश में संगीत कार्यक्रमों की वो शान बने। वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस के साथ एक समय से एंकर, गायक और वॉइस ओवर कलाकार के रूप में जुड़े रहे और आजकल जाने माने गायक हरिहरन जी के साथ बच्चों की एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गायन प्रतियोगिता में मेंटोर की तरह जुड़े हुए हैं। वैसे संगीत की इस यात्रा की शुरुआत हुई थी 19 साल की उम्र में, जब वो इंडियन आइडल के मंच पर दिखे थे। दुनिया भर के दर्शकों को उन्होंने लुभाया और वो फाइनलिस्ट बने। वैसे इन रियलिटी शोज को लेकर कई सवाल मन में आते हैं, तो इसी को लेकर उनसे पूछा कि उनका क्या अनुभव रहा, तो सागर जी बताते हैं।
अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, रियलिटी शोज की जो रियलिटी होती है तो वो होता यूं है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप अपना टैलेंट शोकेस करते हैं। तो जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे कंटेस्टेंट्स जो एंड तक नहीं पहुंच पाए, दे आर ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल इन द इंडस्ट्री। तो पॉइंट ये है कि आपको वो जो स्टेज मिला है, आप उसका कितना फायदा उठाते हैं, उससे आप इंडस्ट्री के किन लोगों तक पहुंच पाते हैं, वो एक जरिया, वो एक स्टेपिंग स्टोन हम कह सकते हैं। तो वो एक इंटरनेशनल स्टेज आपको मिलता है, उसके बाद यू आर कम्प्लीटली ऑन योर ओन। उसके बाद आप हैं, आपकी आवाज है, आपका करियर है। तो मुझे काफी हद तक उसका फायदा हुआ है व्हाइल आई वाज देयर। काफी बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, सोनू निगम जी या अनु मलिक साहब या फराह खान जी, इनके साथ इंडस्ट्री को अंदर से जानने का काफी अच्छा मौका मिला।
अक्सर ये भी कहा जाता है कि ये जो रियलिटी शोज हैं ये स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये क्विक स्टेप्स चढ़ने वाली बात है, कि टैलेंट रातों रात तो नहीं संवारा जा सकता, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं
इस बारे में? आपकी बात एक्चुअली मैं उस बात से अग्री करूंगा पार्शियली, कि डेफिनेटली कई बार ऐसे टैलेंट भी हम स्क्रीन पर देखते हैं, इन शोज में देखते हैं, जिन में उतना टैलेंट नहीं है, फिर भी उनको स्टेज पर लाया जाता है। अभी देखिए, ये एंड ऑफ द डे एक बिजनेस है, एंटरटेनमेंट बिजनेस है। कई बार बहुत सारा ड्रामा होता है इन रियलिटी शोज में, तो कई सारे कंटेस्टेंट्स जो है वो वहां पे है ना, आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको ड्रामा प्रोवाइड करते हैं। की बात बिल्कुल आपने सही कही है कि रातों रात कोई इतना सक्सेसफुल तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है कि जिसमें टैलेंट नहीं है, अगर उसको रातों रात सक्सेस मिल भी गया तो उतनी ही स्पीड के साथ वो नीचे भी आ जाएगा।
तो चलिए, ये तो रियलिटी शो की बात है, इसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं और हमें वो टैलेंट भी मिल जाते हैं इसके माध्यम से जो शायद कहीं छुपे हुए थे। आपको क्या लगता है कि गाने के अलावा किस चीज का ध्यान रखना चाहिए?
मेरे हिसाब से कोई भी गीत को अगर हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, उसे जस्टिस देना चाहते हैं, तो म्यूजिकलिटी के साथ उसका लिरिकल अप्रिसिएशन, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है जो सिंगर्स ने बचपन से ही इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मतलब आप जो गीत गा रहे हैं, उस गीत में जितने भी शब्द आते हैं, जैसे हमारे पुराने जमाने के जो गीत होते थे उसमें बहुत सारे उर्दू अल्फाज आते थे, आजकल भी कुछ गाने होते हैं जिनमें कठिन उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल होता है। सो ओनली इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, उसके बाद ही आप उस पर जस्टिफाई कर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी कई बार कोई गीत गाते हैं, मान लीजिए अगर आप चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, ये कोई गीत गा रहे हैं, और अगर उसमें कठिन कुछ शब्द आते हैं कि होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशा, अगर तबस्सुम और कहकशा का मीनिंग आपको पता नहीं हो तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप, मतलब जो पोएट है वो कहना क्या चाहता है। ये अगर आप जानकर इसे परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत एक अलग इम्पैक्ट उसमें आता है। तो म्यूजिकलिटी के साथ लिरिकल अप्रिसिएशन, ये चीज बहुत जरूरी है, जिस बात पर सिंगर्स ने शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए।
जी, और आपने लिरिकल अप्रिसिएशन की बात की है, तो आपके पसंदीदा शायर या गीतकार कौन है?
वैसे तो बताना बहुत मुश्किल है, इतने हमारे इंडस्ट्री की जो लेगेसी है इतनी खूबसूरत है, बट फिर भी अगर एक नाम मुझे चुनना हो तो मैं कहूंगा साहिर लुधियानवी साहब। मुझे बेहद पसंद है उनकी पोएट्री।
तो कुछ हमारे लिए गुनगुना दें?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साहिर साहब का ही एक मैं गीत आपके लिए गा देता हूँ
जी।
ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं, दिल नवाजी की ना तुम मेरी तरफ देखो, गलत अंदाज नजरों से ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, ना जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आप गाते तो हैं ही। अब मैंने क्या तारीफ करनी है जब आप इंडियन आइडल में ही फाइनलिस्ट थे। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी, अब आपने इतना आपने काम कर लिया है, तो कोई एक विशेष अनुभव आपको किसी संगीतकार, किसी गायक के साथ कुछ हो हमारे साथ बांटने के लिए?
जी बिल्कुल। एक्चुअली एक ये जो एक हमारा जो एक जर्नी होता है, इसमें बहुत बार हमारा बड़ा सौभाग्य होता है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है।
जी
मतलब उनके साथ उठना बैठना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बार कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ मैं परफॉर्म कर रहा था, चेन्नई में हमारा कार्यक्रम था। तो वहां पर कविता जी इतनी इतनी हम्बल है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ सुपर आर्टिस्ट, सच अ सुपर स्टार
जी
हरसेल्फ, उसके
बिल्कुल
बाद भी उन्होंने मुझे ये बिल्कुल भी महसूस होने नहीं दिया कि मैं उनके कंपैरिजन में एक जूनियर सिंगर हूँ।
जी
उन्होंने उतने ही रिस्पेक्ट के साथ मेरे साथ ड्यूएट्स गाए जितने प्रोफेशनलिज्म के साथ वो मानिए उदित जी के साथ गाती होंगी या कुमार सानू दा के साथ गाती होंगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि कविता कृष्णमूर्ति जैसी आर्टिस्ट मेरे जैसे आर्टिस्ट को इतना रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये बड़ी सीखने वाली बात होती है। रिहर्सल में एकदम कायदे से वो टाइम पे आती थी, कायदे से वो मुझे पूछती थी कि अच्छा सागर जी, आप बताइए हम किस स्केल में गाना गाएंगे। तो मतलब आप
अच्छा
एक को
जी,
आर्टिस्ट को एक इक्वल रिस्पेक्ट के साथ जब आप ट्रीट करते हैं, तो
क्या बात
ये
है
बहुत बहुत बड़ी बात है। ये सीखने
जी,
वाली बात है मेरे ख्याल से। एक
बहुत
और अगर मैं आपको किस्सा बताऊं, तो अमीन सयानी साहब के साथ कई बार शोज करने का मौका मिला है, तो उनके
हाँ
साथ भी कई सारी चीजें सीखने का मौका मिला है। कि मानिए हम लोग, जैसे हम लोग एक एक शो में ग्रीन रूम में बैठे थे और कोई एक आर्टिस्ट स्टेज पर गा रहा था, तो
हाँ
अमीन जी को बाहर जाना था, ही हैड टू लीव द प्रोग्राम। सो आई सेड अमीन जी, मैं आपको छोड़ दूं बाहर तक। तो ही सेड कि अच्छा, समबडी सिंगिंग ऑन द स्टेज, हम रुकते हैं जब तक उनका परफॉर्मेंस खत्म नहीं होता, उसके बाद हम लोग जाएंगे। मतलब
क्या
देखिए आप,
बात है
कितने कार्यक्रम में जब
जी,
कोई वीआईपी गेस्ट आते हैं तो वो प्रोग्राम के बीच में व्हेन द आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग, वो टाइम पे ही आके बैठते हैं, फिर पूरा वो माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट इमेजिन कि अ पर्सन, अ सेलिब्रिटी लाइक अमीन साहब इज सेइंग कि नहीं, कोई भी आर्टिस्ट हो उसका रिस्पेक्ट करिए आप, वो परफॉर्म कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ही हम जाएंगे, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो, ना ही ऑडियंस ना ही आर्टिस्ट।
क्या
तो आई थिंक ये
बात है,
बहुत बड़ी सीखने
बहुत
वाली
बड़ी।
बात।
किसी भी आर्टिस्ट का किसी भी स्तर पर हो, वो चाहे अपनी शुरुआत में हो या वो प्राइम पर हो, उनके लिए जो सम्मान है वो आर्टिस्ट के प्रति है, बल्कि वो कला के प्रति सम्मान है। तो कला किसी
बिल्कुल सही
भी
बात।
जी किसी भी स्तर पर हो, उसको सम्मान करना है। अब कला की बात हुई है, आपने अपने कुछ अनुभव भी सुनाए हैं, और मुझे मालूम है जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंची भी हूँ, खास बात है कि आपने एक बहुत पुरानी फिल्म का एक सीन जो कि फिल्म में नहीं रह सका, उसके ऊपर आपकी खोज थी और आपने उसको दोहराया है। तो आपके ही से ही सुनना चाहूंगी कि वो पूरा वाकया क्या है।
जी बिल्कुल। तो जो गोल्डन एरा हम जिसे कहते हैं, वो म्यूजिक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और मेरा ये प्रयास हमेशा होता है कि जो थोड़े अनसुने गीत हो, लेकिन उन गीतों में एक बात है जिनको फिर से हम ऑडियंस के सामने अगर लाएं अच्छी तरह से, तो ऑडियंस डेफिनेटली उस चीज को अप्रिशिएट करेगी। ये मेरा हमेशा एक मानना रहा है, एक मोटिव रहा है। तो इस वजह से जब मैंने साहिब बेबी और गुलाम ये फिल्म देखी थी, तो उसके अराउंड मैं उसका ट्रिविया जरा सर्च कर रहा था कि गुरुदत्त साहब की इतनी मतलब इतनी बड़ी फिल्म है, तो चलिए
जी
इस मूवी के पीछे किन-किन लोगों ने मेहनत की है उस बारे में थोड़ी मैं जानकारी हासिल करता हूँ। तब मुझे पता चला कि इस गीत के जो क्लाइमैक्स सीन में एक गीत उन्होंने प्लान किया था वो गीत फाइनली उसे हटा दिया गया था। रीजन बीइंग कि उसका पिक्चराइजेशन उस जमाने के हिसाब से सेंसर बोर्ड को लगा कि थोड़ा ज्यादा बोल्ड है, एंड बिकॉज वो पिक्चराइजेशन वो सीन हट गया, उसके साथ साथ एक बहुत प्यारा गीत भी हट गया और ऑडियंस उससे वंचित रह गई। अभी गीत क्या था, वो धुन क्या थी, वो हेमंत कुमार साहब ने कंपोज की थी और वो धुन इतनी प्यारी थी कि हेमंत दा को लगा कि इस धुन को तो हम वेस्ट नहीं होने दे सकते, इसलिए उन्होंने उस गीत को दूसरी फिल्म में फिर से दोहराया था। लेकिन जो इसके शब्द थे जो कि शकील साहब ने लिखे थे, ये शब्द से ऑडियंस वंचित रह गई। तो जब मैंने इस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने का एक प्रयास किया तो काफी सारे जो मूवी एंथुजियास्ट होते हैं उनकी तरफ से मुझे पता चला कि इसके शब्द मुझे मिल सकते हैं। तो मैंने इन शब्दों को प्राप्त करके फिर मैंने इस गाने को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो
जी
बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार मिला कि अरे ये गीत तो गुम हो गया था, ये गीत से
हाँ
तो ऑडियंस वंचित रह गई थी, अच्छा हुआ मैंने उसे रिवाइव किया। तो द सॉन्ग गोज समथिंग लाइक दिस। साहिल की तरफ कश्ती ले चल, तूफान के थपेड़े सहना क्या, तू आप ही अपना माझी बन, मौजों के सहारे बहना क्या, साहिल की तरफ कश्ती ले चल।
वाह,
तो ये वो धुन थी हेमंत कुमार साहब की और शकील साहब के वर्ड्स थे। तो ये धुन आई एम श्योर हमारे लिसनर्स ने अब तक आइडेंटिफाई कर ली होगी। इस
बिल्कुल
धुन को हमने अनुपमा फिल्म में सुना था,
बिल्कुल
या दिल की सुनो दुनिया वालों, इस आइकॉनिक गीत में हमने धुन तो सुन ली बट बिकॉज ऑफ दिस अभी शकील साहब के वर्ड्स भी ऑडियंस सुन पाएगी।
जी बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छा काम किया आपने। बहुत सारी यादें भी ताज़ा करती हैं, क्योंकि जिन्होंने वो साहब बीबी और गुलाम पिक्चर देखी है वो अब सोच सकेंगे कि फिल्म का आखिरी सीन क्या होना था और फिर क्या रहा।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
सागर जी, बहुत अच्छा लगा है आज आपके साथ बात करके, और बस इसी तरह से आप संगीत के साथ जुड़े रहें और सफलता प्राप्त करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी।
अनिता जी थैंक यू सो मच, आपसे गुफ्तगू करके, आपसे बातें इतनी सारी करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके द्वारा नए लिसनर्स के साथ जुड़ने का भी मौका मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपके प्यार के लिए, आपके ऑल द अफेक्शन दैट यू हैव शोन टुवर्ड्स मी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।